एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल मूरत अजोनी सैभं गुरुप्रसाद हर अमृत वेले वत्ते का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुटे नाही अमृत वेला सच नाम वड़े आई विचार। धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दी बाणी ने अमृत वेले दी अपनी एक महानता अपने बोलां विच अपने शब्दां विच दर्शाई है। दरअसल देखा जाए प्रकृति ने जो साडे शरीर दी सिरजना कीती है इस दे च रुत दा ते वक्त दा अपना प्रभाव है। मौसमी खिजां चारों पासे प्राकृतिक मंडल उदास दिखाई देंदा है। झड़ रहे ने पत्ते और चल रहीआं ने हवावां डोल दियां या शाखां अपना शिंगार बदल रहीआं ने उदास दिखाई दे रहीआं नगन दिखाई दे रहीआं ने ये शाखां दरख्तां दीआं। हूबहू मनुख ते मन दी प्रकृति भी कुछ इस तरह ही जो है देखण नूं मिलदी है। जर्रा जर्रा पत्ता पत्ता खिड़िया होया है। मौसमे बहार है। धरती ने मानो बड़ा सुंदर शिंगार कीता है। किधरे पीले रंग दा किधरे गुलाबी रंग दा किधरे चिट्टे रंग दा इतने सुंदर शिंगारमई वस्त्र धरती दा चप्पा चप्पा सुहावना हो जांदा है। ए मौसमे बहार मनुख दे मन दे उत्ते भी अपना एक खास असर पांदा है। गर्मी दी रुत आ गई है। मन दी हालत कुछ और हो गई है। ठंड आ गई है। शरीर ठिठर रहा है। तो रुत तो और समय तो मन प्रभावित है तन प्रभावित है। सर्दी आ गई है सानू कपड़े बदलने पैंदे ने मोटे कपड़े गर्म कपड़े लबने पैंदे ने और गर्मी मजबूर कर देंदी है गर्म कपड़ियां नूं एक पासे करन ते। हूबहू जो समा है दिन दे चार पैर रात दे चार पैर जिथे रुत दा असर है मौसम दा तन ते मन ते असर है उथे चार पैरां दा जिसनूं समा कहिंदे ने वक्त कहिंदे ने इस दा भी मन दे उत्ते तन दे उत्ते अपना प्रभाव है। आद काल तो संत जना दी पकड़ दिच आई एक गल के रात दा जो चौथा पैर है अगर मनुख समय सिर वाकई रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदियां सौ गया तो शरीर दी नींद रात दे चौथे पैर दे आरंभ होंदियां संपूर्ण हो जांदी है अखां खुल जांदियां। इह गल वखरी है अगर मनुख समय दे मुताबिक सुत्ता नहीं तो फिर मुश्किल है कि अमृत वेले ए उठ सके। वक्त सिर सौ गया नियम पूर्वक तो प्रकृति जगा देंदी है। असी देखदे हां प्रकृति पंछियां नूं जगा देंदी है पशुआं नूं जगा देंदी है क्योंकि उन्हां दी नींद स्वाभाविक है प्राकृतिक है। रात दे पहले पैर दे अंत होंदे आउंदे आ चिड़िया पंछी पशु करीबन करीबन सो जांदे ने। रात दा चौथा पैर आरंभ होया है चहचहांदे हुए पंछी उठ बैठदे ने गऊआं उठ बैठदियां ने बछड़े बोलन लग पैंदे ने गऊआं दे। सारे दा सारा पशु पक जगत समय तो प्रभावित है। वक्त सुलांदा है वक्त जगा देंदा है। मनुख ने अपनी नींद नू प्राकृतिक नहीं रहन दिता और किधरे किधरे अपने जागण नू भी प्राकृतिक नहीं रहन दिता। वैसे तो देखिया जाए इहदा खान पान पैरान भी प्राकृतिक नियम दे मुताबिक नहीं है। यही कारण है कि जैसे मनुख प्रकृति तो दूर होंदा गया परमात्मा तो भी दूर होंदा गया। परमात्मा दे निकट आन लई इसनू प्रकृति दे निकट आना ही पएगा, प्रकृति दे प्रभाव नू कबूल करना ही पएगा और उहदी नियमावली नू जिंदगी दा अंग बनाना ही पएगा। तो बहुत पुराने समय तो जो अध्यात्मक चिंतन करदे सन हर वक्त मन नाल जिन्हां दी घोल रहिंदी सी, मन दी साधना ते तल ते जीण वाले अंतरमुखी पुरुष, उन्हां दी पकड़ दे चाया रात दा चौथा पैर भजन लई बड़ा सहायक है, बहुत सहायक है, मदद करता है। कहिंदे ने ढंग नाल भोजन कीता होवे रात नूं तो भोजन आलस पैदा करके नींद लियांदा है। ये नींद उस भोजन नूं पचा देंदी है और जब नींद पूर्ण तौर ते पचा देंदी है भार हल्का आउंदा है, आलस मध्यम आउंदा है, ये जाग पैंदा है। दोबारा शरीर नूं भोजन दी लोड़ है ते हुण शरीर नूं भजन दी भी लोड़ है, मन भजन भी चाहुंदा है। इस समा किन ने सौ लुकमे दिन दे ते एक लुकमा सुबह दा। सारी दिन दी साधना ते अमृत वेले दे एक पल दी साधना बराबर हो जांदी है, समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ते साफ कहंदे ने जे एक होए तां उगवे रुत्ती हों रुत होए। एक ते बीज ठीक होवे मुकम्मल होवे पर बीजन वाली रुत भी ते चाहिदी है। मौसम दे अनुकूल जो किसान बीज नहीं बीजदा सही ढंग नाल प्रफुल्लित भी नहीं आउंदा, वो पूर्ण फसल नाल अपने घर दे कोठे भर भी नहीं सकेगा। तो ये जो रात दा चौथा पैर है इसनूं साडे देश दे प्राचीन सनातनी ऋषियां ने कहा ये ब्रह्म मुहूर्त है, ब्रह्म दे चिंतन दा समय है, ब्रह्म नाल जुड़न दा वक्त है। इसनूं धन गुरु नानक देव जी महाराज ने अमृत वेला आख्या, ऐसा समा जद अमृत दी वर्षा हो रही है। इसनूं इस्लाम दे महान बानी मोहम्मद साहब ने कहा अलल सुबह, अल्लाह दी सुबह, अल्लाह दी सवेर, ओ सुभा जो सुभावक अल्लाह नूं चेते करा देंदी है। थोड़ी जिहा वी किसी मनुख दे अंदर अंतरमुखी होण दी जागृति है तो यह समा बहुत मदद करदा है, बहुत मदद करदा है। धन गुरु रामदास जी महाराज दा फरमान हर अमृत वेले वत्थे का बीजिया भगत खाए खर्च रहे निखुकटे ना। अंतिशकरण दी धरती देच जो अमृत वेले नाम दा बीज बो छड़दा है बरकता नाल झोलियां भर जांदियां ने, ओ लोक परलोक अपना सुहेला कर लेंदा है। इस समय जो जागे है और इस समय जो बंदगी विच लीन होया है दुनिया भर दे बंदगी देच पुगे होए पुरुष संत जन उस साधक तो फिदा जांदे ने, अवतारी पुरुष भी जो है सदके जांदे ने। भाई साहब भाई नंदलाल ते कहंदे ने शबद कुर्बान खाके राहे संगत दिले गोया हमी बस आरजू करत। इक्को ही आरजू रह गई है, हे गुरुदेव अमृत वेले जिहड़ियां संगतां थोड़े मार्ग ते चल पैंदियां ने उन्हां दे कदमां दी खाक मैनू बना। ओ कदम बड़े पावन ने, ओ चाल वली महान है, अमृत वेले दी चाल गुरु दी तरफ, दरअसल परमात्मा दी चाल है, ए परमात्मा दी तरफ चलना है और ए परमात्मा तक पहुंचण दा एक महान वसीला है। भाई साहब भाई नंदलाल ते इत्थे तक कहंदे ने थोड़ी जिहावी जिस किसे दे अंदर जागृति पैदा हुई है उसने एक गल समझ ली है ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੋ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਾਨੋ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਾਮ ਸੋਇਆ। ਬੇਦਾਰੀ ਅਸਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸ਼ੌਕ, ਗੋਇਆ ਹਰਾਮ ਕਰਦਨ ਆਈਂਦਾ ਖੁਆਬ ਸੁਬਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੇਦਾਰੀ ਜਾਗਰਤੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਈਂਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਨੋ ਹਰਾਮ ਕਰ ਛੱਡਦਾ, ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਸੁਭਾਵਕ ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਨੱਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰ ਵਾਰੀ ਹੈ। ਹੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਮਨ ਦੀ ਇਹ ਭਾਵ ਦਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਖੁਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੱਕ, ਨੱਖ ਸਿਸ ਲੋ ਸਗਲ ਅੰਗ ਰੋਮ ਰੋਮ ਕਰ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਮ ਰੋਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਚਾਹਤ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੰਗ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਕਾਟ ਕਾਟ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਚਰਨ ਪਰਵਾਰੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੱਟ ਕੇ ਪੁਰਜ਼ਾ ਪੁਰਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਜੋ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਨਿਛਾਵਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਵੀ ਆਖਰ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇ ਬਚਣਗੇ, ਕੀ ਕਰੀਏ। ਆਪ ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਾਸ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜੋ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਦੇਣਾ। ਫਿਰ ਪਵਨ ਰਾਣੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ, ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਗਨ ਜਰਾਏ ਤਾਹੇ ਪੀਸਨ ਪਿਸਾਏ, ਲੈ ਉਡੇ ਪਵਨ ਹੋਏ ਅਨੇਕ ਪ੍ਰਕਾਰੀਏ। ਤੋਂ ਪਵਨ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਆਖਰ ਪਵਨ ਹਰ ਵਕਤ ਤੇ ਇਸ ਖਾਕ ਨੂੰ ਔਰ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਤੇ ਸੁੱਟੇਗੀ। ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਟੇ, ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟੇ। ਜਤ ਕਥ ਸਿੱਖ ਪਗ ਧਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਤ, ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀਏ। ਜਿੱਧਰ ਕਿਧਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਸਬੇ ਚ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਪਵਨ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਸ ਦੀ ਖਾਕ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੇ ਚੂਰੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਚ ਵਿਛਾਵੇ, ਉਸਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਚ ਵਿਛਾਵੇ। ਜਤ ਕਤ ਸਿੱਖ ਪਗ ਧਰੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਤਾਹੂ ਤਾਹੂ ਮਾਰਗ ਮੈਂ ਭਸਮ ਕੋ ਡਾਰੀਏ। ਤਹਿ ਪਦ ਪਾਵਕਤ ਚਰਨ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹੇ, ਦਇਆ ਕੇ ਦਇਆਲ ਮੋਹੇ ਪਥਤ ਉਧਾਰੀਏ। ਇਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਥਤ ਦਾ ਵੀ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਔਰ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮ ਅਤਿਅੰਤ ਪਾਵਨ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਹੈ। ਚਾਹੋ ਨਾਲ, ਉਮੰਗ ਨਾਲ ਜੋ ਸਮੇਂ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜੁੜ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੰਤ ਦਾ ਜਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਦਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਪੌੜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ਕੀਮਤ ਹੈ ਔਰ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਰਨੋਂ ਦੁੱਖ ਹੋਏ ਸੁਰਸਰੀ, ਤਜ ਬੈਕੁੰਠ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੁਰਸਰੀ ਗੰਗਾ, मिथ ए कह रही है कि गंगा ब्रह्मे दे करमंडल दा जल है, विष्णु दे चरणा दा जल है, शंकर दियां जटावां दा जल है। ऐसा साडे देश दे प्रचलन है इस मिथ दा। करमंडल दा पानी विष्णु दे चरणा ते डोले है ब्रह्मे ने, ए जल आन के गिरे है शंकर दियां जटावां च और उस दे चों ए निकली गंगा दी धार। ठीक जैसे गंगोत्री बहुत उच्ची एक चोटी जद निकल दी है, धारा छोटियां छोटियां जी लगदियां ने, वाकई जैसे शंकर दियां जटावां उन और उना दे चों टपकदा होया ए बूंद बूंद गंगा दा जल। खैर इस मिथ नूं जो रूप दिता है भाई साहब भाई गुरदास जी ने, वो काबले शुनीद है। चरणों दुख होए सुरसरी तज बैकुंठ जगत विच आई, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। इस पृथ्वी देते 12 मास वगण वालियां नदियां भाई गुरदास जी की गिनती के मुताबिक 999 ने, एक घट 1000 जो 12 मास दरिया बगदे ने। भाई जी कहने ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, उस दे जल दी अपनी खूबी है। हर नदी दा जल अलग अलग है, हर थां दी वायु अलग अलग है, हर जगह रेत दे जर्रे अलग तासीर रखदे ने। यही कारण है कि जद कदी किसे दा कोई रोग औषधियां नाल ठीक ना होवे तो पुराने हकीम कह दिता करदे सन, तू आबो हवा बदल ले, पानी बदल ले, हवा बदल ले, टिकाणा बदल ले। और ऐसा देखण दे चाया है, वाकई टिकाणे दे बदल दया आब हवा दे बदल दया ओ तंदुरुस्त होया है, ओ ठीक होया है। हवा किसे शरीर लई अमृतमई हो सकदी है, जल किसे शरीर लई अमृतमई हो सकदा है। गंगा दा जल शरीर लई इतना लाभकारी मनिया गया कि प्राचीन जो वैद सन हकीम सन शरीर शास्त्री सन उना दी रसना तो निकले ते अमृत है, ये ते शरीर लई लाभकारी है। दरअसल आत्म चिंतन कर लई अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर मन दा आत्म चिंतन करना भी कठिन है, औख है। शरीर दा स्वस्थ होना लाजमी एक शर्त है। शरीर नूं स्वस्थ रखण देच गंगा दा जल वाकई अमृत दा ही कम करदा सी, एक महान औषधि दा कम करदा सी। बहुत सारियां खूबियां इस विच देखियां गईयां। जड़ी बूटियां नाल स्पर्श करदी होई ए धारा जद मैदानी इलाके देच आउंदी है तो जड़ी बूटियां दा रस ते उना दी तासीर भी लेके आउंदी है। जद इसका कोई पान करदा इस जल दा तो शरीर नवा नरोआ हुंदा है, शरीर दुते इस जल दा अमृतमई प्रभाव पैंदा है। एक गल वखरी है, उस जमाने च कहा गया सी इस देश कपड़ा निचोड़ना और थुक सुटना महापाप है, जदकि बड़े बड़े शहरां दे गटर इस गंगा दे च पै रहे ने, महापाप व्यापक पद्धर ते हो रहा है, महान गुनाह व्यापक पद्धर ते हो रहा है। अमृतमई जल नूं किसे हद तक विष बनाया जा रहा है। मनुख ने जैसे अपना जीवन विष बना लिया है, ए अमृतमई हवा नूं अमृतमई जल नूं थां थां ते विष बनाण दे जो है तुलिया होया है। किधरे दी हवा खराब कीती और किधरे नदी नालियां दे जल दे प्रवाह नूं इसने खराब कीता है, गंदा कीता है, मलिन कीता। खैर ए एक अलग विषय है, ए जल अमृतमई है। इस वास्ते भाई साहब भाई गुरदास जी कहंदे ने 999 नदियां दे चों गंगा सिरमौर है, 900 नदी 99 68 तीरथ अंग समाई। ਅਠਾਠ ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦੇਵ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਰੁਦਰ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਕਰਨ ਪ੍ਰਯਾਗ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼, ਹਰਿਦੁਆਰ, ਬਨਾਰਸ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਗ ਦਾ ਸੰਗਮ ਇਤਿਹਾਸਕ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥ ਇਸ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਇਹ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਸੁਭਾਇਮਾਨ ਦਿਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਤਨ ਮਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿਚ ਲਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਠਾਠ ਤੀਰਥ ਗੰਗਾ ਦੇ ਤੱਟ ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। 68 ਤੀਰਥ ਅੰਗ ਸਮਾਈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਮਹਾਦੇਵ ਲੈ ਸੀਸ ਚੜਾਈ। ਇਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸਤਕ ਦੀ ਥਾਂ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਵੀ ਦੇਵ ਸਰੇਵੜੇ ਜੈ ਜੈ ਕੌਰ ਬੜੀ ਬੜੇ ਆਈ। ਬੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਉਪਮਾ ਹੈ। ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਤੱਕ ਉਪਾਸ਼ਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦ ਵਗਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਜਲ, ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਧਾਰਾ, ਤੋ ਦਿਸ ਪੈਂਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਹਿਮਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਦੀ ਵੀ ਗੰਗਾ ਦਾ ਜਲ ਬੋਤਲਾਂ ਚ ਰੱਖ ਦੇਈਏ ਗੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਬਦਬੂਦਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਗਵਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਐਸੀ ਇੱਕ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ, ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਚ ਨਵੀਨਤਾ ਨਿਖਾਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਵਾਕਈ ਇਹ ਜਲ ਜਲ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੰਕਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਹਾਨਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਣ ਗੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲਖ, ਲਖ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਥ ਲਿਵਲਾਈ। ਇੱਕ ਗੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਜਲ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਹੈ ਕਰਮੰਡਲ ਦਾ ਜਲ ਜੋ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਜਲ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ। ਸਣ ਗੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲਖ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਕੁੰਠ ਨਹੀਂ, ਲੱਖਾਂ ਬੈਕੁੰਠ, ਲੱਖਾਂ ਗੰਗਾ, ਲੱਖਾਂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਜਲ, ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦੇ ਮਸਤਕ ਦਾ ਜਲ, ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਿਆਂ ਦੇ ਕਰਮੰਡਲਾਂ ਦਾ ਜਲ। ਸਣ ਗੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਲਖ, ਲਖ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਥ ਲਿਵਲਾਈ। ਸਾਧੂ ਧੂਰ ਨ ਪੁਜਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨਾਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸਤਸੰਗ ਵਿਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਕਦਮਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਗੰਗਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਦਕੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੇ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਨ ਕੇ ਚਰਨ ਤੀਰਥ ਕੋਟ ਗੰਗਾ। ਐਸਾ ਜੋ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੂੜ ਹੈ, ਮਾਨੋ ਕਰੋੜਾਂ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਚਰਨ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਰੇਤ ਦੇ ਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਸੀਰ ਬਣਾ ਦੇਗਾ। ਇਤਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਦੀ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨਗਮੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਚਹਿਚਹਾਟ, ਕਲੋਲ, ਖੇੜਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ। ਐਸੇ ਸਮੇਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਦਕਿਸਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਉੱਠ ਬੈਠਾ ਹੈ ਆਤਮ ਚਿੰਤਨ ਲਈ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਲੱਭਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਹਾਨ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ, ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟ ਹੈ ਉਹ ਭੇਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਰੱਖ, ਭਾਵ ਉਹ ਸਮਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਲਈ ਹੈ। ਧਨ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਲੱਗ ਵਕਤ, ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ ਅਲੱਗ, ਸਰੀਰਕ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ, ਔਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਬੰਧ, आर्थिक रिश्ते राजनीति दा वेला इस दे लई अपने अपने समय ने, पर रात दा चौथा पैर प्रभु नाल मिलन दा समय, ईश्वर नाल जुड़न दा समय। इस समय नू तू ईश्वर दे ही अर्पण कर, प्रभु दे अर्पण कर। इस समय अपने कोल ना रखें, सुता ना रह जाएं, उठ उस समय। और ये उठना एक बंदगी है, उठना एक इबादत है। यही कारण है कह दिता गया ए सुबह सुबह अल्लाह दी है, ए सुबह ए सवेर ए मुहूर्त ब्रह्म है, ए समा अमृत वेला है, अमृत दी बरखा हो रही है। दरअसल कहने ने उस समय माया सुती पई होंदी है। माया दे सुते रहन तो मुराद ए है, अक्सर लोग सुते पए ने, तो दुनिया जे सुती पई है तो बोल भी बंद ने। करीबन करीबन 90% जो मनुख दे बोल होंदे ने समाजिक होंदे ने, आर्थिक होंदे ने, राजनैतिक होंदे ने, और उन्हां बोलां दे नाल वातावरण मलीन होंदा है। उन्हां बोलां दियां तरंगां चारों पासे छा जांदियां ने। नवे नवे इबादत करन वाले बंदे नूं, ध्यान साधना करन वाले बंदे नूं ए बोल और उन्हां बोलां दियां तरंगां प्रभावित कर दियां ने, नाम जुड़न विच बाधा खड़ी कर देंदियां ने। तो जगत ते सुत्ता पे है, ए तरंगा पैदा नहीं हो रही। ऐ मनुख तो उठ बैठ, अपने अंदरों अध्यात्मक तरंगा पैदा कर, ताकि परमात्मा दी बख्शिश जो बरस रही है ओदा तू पात्र बन सके और अपनी झोली दे जो है पा सके। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इसनु ऐसा कह, अमृत वेला सच ना वड़े आई विचार। अमृत वेले उठ के सच्चे नाम दा चिंतन ते उस वड्डे दियां वड्याईयां दी विचार तो कर। ए गल वखरी है कि दिन भर भी तो विचार कर सकदा है, पर ओ तरंगा उस विचार नू गहरा नहीं जान देणगियां जो चारों पासे फैलियां होईयां ने। रात नू शरीर विश्राम दे जाना चाहुंदा है तो शरीर दी चेतना शरीर दी शक्ति सारी सुकड़ रही है, मुश्किल है। उस समय तू संघर्ष करके प्रभु दा जो है चिंतन कर सके। ए समा ए वक्त मदद करदा है। जैसे पहाड़ ते एक मनुख निर्भर होके चल रहे है, पर एक ने सिर दे एक मन दा वजन रखे होया है, तो कठिन होवेगा उसनु जो है चढ़ना। अमृत वेले मनुख निर्भर होंदा है, दिल दिमाग ते कोई बोझ नहीं होंदा। ओ समा मदद करदा है। धन गुरु नानक देव जी महाराज ने इस दी महिमा गायन करदे होया कह है, दुनिया दियां सारियां बरकतां उस मनुख दे झोली दे च आण पैंदियां ने जो उस समय उठ के वाहिगुरु नाम दा अभ्यास करदा है, वाहिगुरु नाम दा चिंतन करदा है। इस चिंतन द्वारा उस दा प्रभु नाल संबंध जुड़दा है। ते प्रभु नाल संबंध जुड़न दा मतलब की है, महाशक्ति नाल संबंध। और जैसे महाशक्ति नाल संबंध जुड़दा है, महाशक्ति उस दे अंदर प्रवेश होनी शुरू हो जांदी है। ईश्वर नाल जुड़िया होया मनुख कमजोर नहीं हो सकदा। तिथे जोद महाबल सूर तिन में राम रहा भरपूर। जिन्हां दे अंदर राम भरपूर होके समा जांदा है वो महाबली आउंदे ने, योद्धा आउंदे ने, सूरबीर आउंदे ने, और अमृत वेले दी इस बरकत नूं प्राप्त करके महान योद्धे ओ बन जांदे ने।